पाठ 20 अध्याय 13। इससे पहले कि हम लैव्य व्यवस्था 13 पर वापस जाएं, मैं कुछ टिप्पणियां करना चाहूंगा जिनसे मुझे आशा है कि हमें सही रास्ते पर बने रहने में मदद मिलेगी और हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसे उचित संदर्भ और परिप्रेक्ष्य में रख सकेंगे। सबसे पहले मैं यह बताना चाहूंगा कि तोरे का अध्ययन करना, और खास तौर पर जब यह लैव्य व्यवस्था से संबंधित हो, हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। हम में से जो लोग बच गए हैं और पारंपरिक चर्च के माहौल में पले बढ़े हैं, उनके लिए तोरे और पुराने नियम की दुनिया नए नियम की दुनिया से लगभग अलग बाइबल की तरह लगती है। मेरा मानना है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि हम शुरुआत और बीच को पढ़ने से पहले अंत पढ़ते हैं। ये ऐसा था जैसे हम किसी थिएटर में गए हों, 3 अंक वाले नाटक का सिर्फ अंतिम अंक देखा हो और उस तीसरे अंक को देखने के लिए कई बार वापस गए हों, अंक 1 और 2 को कभी नहीं देखा हो। और जब कोई ऐसा करता है तो जो निष्कर्ष निकलता है वह लेखक के इरादे से कहीं भी अधूरा या कई हद तक अलग हो सकता है। खैर, अब हम अंततः मानव जाति के लिए परमेश्वर के वचन के आरंभिक दृश्यों का गंभीरता से अध्ययन कर रहे हैं और कुछ मामलों में यह एक ऐसा संदर्भ स्थापित कर रहा है जो हमारी अपेक्षा से कुछ अलग है। कुछ विश्वासियों के लिए यह काफी असहज है और कुछ लोग इस डर से भर उठेंगे कि मानव निर्मित सिद्धांतों से समझौता किया जा सकता है, लेकिन उस असहजता से हमें लड़ना होगा, अन्यथा हम नए नियम में मौजूद सभी आश्वर्यों को आत्मसात नहीं कर पाएंगे। मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम जितना अधिक तोरह में प्रवेश करेंगे उतना ही आपका विश्वास बढ़ेगा और उतना ही अधिक आप समझेंगे कि यहोवा ने हमें बचाने के लिए अपने मसीहा को क्यों भेजा। जिस चीज को चुनौती दी जाएगी वह परमेश्वर के वचन या यीशु मसीह में हमारा विश्वास नहीं है, बल्कि मनुष्यों के कुछ सिद्धांत हैं जो हम सभी को सिखाए गए हैं। यूहन्ना की पुस्तक हमें बताती है कि यीशु वचन है और वचन परमेश्वर है। हर ईसाई जानता है कि वचन शास्त्र या बाइबल के लिए एक और शब्द है, लेकिन यूहन्ना किस वचन के बारे में बात कर रहा था? विश्वासियों ने शायद ही कभी यह सोचना बंद किया हो कि यूहन्ना और पौलुस और पतरस और मसीह के बाकी सभी शिष्यों के लिए परमेश्वर का वचन पुराना नियम था, मुख्य रूप से तोरा। यीशु की क्रूस पर मृत्यु के बाद कम से कम 150 वर्षों तक पुराना नियम के अलावा अन्य शास्त्र जैसी कोई चीज नहीं थी। लगभग 200 ईसवी तक नए नियम जैसी कोई चीज नहीं थी, इसलिए जहां तक यूहन्ना अपनी पुस्तक में वचन के अर्थ के रूप में सीधे संदर्भित कर रहा था वह केवल पुराना नियम था। यीशु यीशुआ तोरह था। अब मैं यह कहना चाहता हूं कि इससे पहले कि मेरी गलत व्याख्या की जाए, मैं निश्चित रूप से नए नियम को ईश्वर की प्रेरणा और ईश्वर के वचन का हिस्सा मानता हूं, लेकिन नए नियम को ईश्वर के वचन का एकमात्र बचा हुआ अवशेष या अभी भी मान्य हिस्सा मानना एक गंभीर गलती है। इसके अलावा यह कहना बौद्धिक रूप से गलत है, यदि बेईमानी नहीं है, कि नए नियम में वचन या पवित्र शास्त्र का कोई भी संदर्भ केवल खुद को संदर्भित कर रहा था। एक भी नया नियम लेखक को इस बात का अंदाजा नहीं था कि एक सदी या उससे भी पहले, इसलिए उनके लेखन के बाद चर्च के नेताओं के पैनल एक साथ मिलेंगे और पत्रों, सुसमाचारों और अप्रमाणिक पत्रों को नया धर्म ग्रंथ घोषित करेंगे। यीशु ने यह सब इस तरह से कहा कि मैं चाहता हूं कि यह वास्तव में तोरह के पंथ का हिस्सा बन जाए। कक्षा इसका अनुसरण करने का प्रयास करती है और यह है यूहन्ना 5:46, यदि तुम मूसा की प्रतीति करते तो मेरी भी प्रतीति करते, इसलिए कि उसने मेरे विषय में लिखा है। 54, परंतु यदि तुम उसकी लिखी हुई बातों की प्रतीति नहीं करते तो मेरी बातों की कैसे प्रतीति करोगे। यूहन्ना 5 में यीशु सप्त के दिन मंदिर में कुछ यहूदियों से बात कर रहे थे। अब ये यहूदी जोरदार तरीके से तर्क देते थे कि वे निश्चित रूप से मूसा और उसके लिखे को जानते थे, लेकिन वास्तव में वे केवल सोचते थे कि वे जानते हैं। वे जो सबसे अधिक जानते थे और जो तोरह शास्त्र वे पढ़ते थे वह उनके सिद्धांत और परंपराएं थीं। वे शास्त्र को परंपरा द्वारा बनाए गए सांचे में ढालने की कोशिश करते थे। ईसाई धर्म ने 800 वर्षों से यही किया है। हम सिद्धांत स्थापित करते हैं
और फिर शास्त्रों को इस तरह से पढ़ते हैं कि वे सिद्धांतों को मान्य कर सकें। जो शास्त्र सिद्धांतों को मान्य नहीं करते हैं उन्हें तर्क से बाहर रखा जाता है, या अधिक बार पदों को संदर्भ से पूरी तरह से बाहर ले जाया जाता है और किसी ऐसे अर्थ को दिया जाता है जिससे उनका कोई लेना देना नहीं होता है। यीशु उन सभी को बता रहे हैं जो सुनेंगे कि मूसा का तोरा उन सभी चीजों को समझने का आधार है जो इसके बाद आती है नए नियम सहित। यीशु कहते हैं, आप मेरे शब्दों पर कैसे विश्वास कर सकते हैं अगर आप मूसा के शब्दों पर विश्वास नहीं करेंगे? पहले मूसा को समझना सिर्फ यहूदियों के लिए ही नहीं बल्कि गैर यहूदियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं आपसे पूछता हूं, आपको क्या लगता है कि हम कैसे समझ सकते हैं कि यीशु ने जो कुछ कहा उसका क्या मतलब था? अगर हम न केवल यह नहीं समझते कि मूसा का क्या मतलब था बल्कि हमने कभी भी उनके शब्दों को गंभीरता से पढ़ा भी नहीं है, या इससे भी बदतर हम उन शब्दों को अनदेखा करते हैं, कहते हैं कि वे सिर्फ एक बोझ हैं जिसे हमसे हटा दिया गया है और उसी व्यक्ति द्वारा त्याग दिया गया है जिसने अभी अभी कहा है कि सबसे पहले आपको मूसा पर विश्वास करना चाहिए। उम्मीद है कि तोरह क्लास इस समस्या को ठीक करने की दिशा में आगे बढ़ रही है।
दूसरी बात, अमेरिकियों के लिए तोरह को बिना किसी बिंदु पर झुंझलाहट के पढ़ाना विशेष रूप से कठिन है, क्योंकि यह लगातार दिखाता है कि यहोवा अपने चुने हुए समूह के लिए और अपने उद्देश्यों के लिए व्यक्तियों, यहां तक कि पूरे राष्ट्रों को नष्ट कर रहा है। मैंने दुनिया के बहुत से हिस्सों की यात्रा की है और आप में से कई लोग मुझसे ज्यादा यात्रा करते हैं, और मेरे अनुभव में मैंने अमेरिका से ज्यादा व्यक्तिवादी संस्कृति नहीं देखी है। हम चीजों को एक व्यक्ति के अधिकारों के आधार पर देखते हैं जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और इसलिए हम अमेरिकी लोग बाइबल को उसी नजरिए से देखते हैं। हमारे लिए लैव व्यवस्था पढ़ना, खास तौर पर और मासूम जानवरों की बलि चढ़ते देखना मुश्किल है, अन्यथा मासूम लोगों को त्वचा रोग होने पर समुदाय से बहिष्कृत कर दिया जाना, पुजारियों को परमेश्वर द्वारा जला दिया जाना जिन्होंने जाहिर तौर पर एक अनुष्ठान प्रक्रिया को बिगाड़ने के अलावा कुछ नहीं किया, और यह सब यहोवा के विशेष आदेश पर। फिर भी परमेश्वर की पवित्रता, जिसका प्रतिनिधित्व उनके निवास और इसराइल राष्ट्र द्वारा किया गया था, किसी भी खतरे को बर्दाश्त नहीं करेगी। परमेश्वर की पवित्रता और इसलिए उनके लोगों की पवित्रता इतनी सर्वोपरि है कि व्यक्ति और उनके परिवार अक्सर पीड़ित होते हैं या मर जाते हैं ताकि पवित्रता को नुकसान न पहुंचे या पवित्रता अपवित्र न हो। अपने पवित्र राष्ट्र और अपने राज्य के आध्यात्मिक कल्याण को खतरे में डालकर लोगों की असुविधा को बर्दाश्त नहीं किया जा रहा था। अगर हम सत्य चाहते हैं तो हमें ईश्वर को इस संदर्भ में देखना चाहिए कि वह वास्तव में कौन है, न कि इस संदर्भ में कि हम क्या चाहते हैं। तोरह में हम जिस ईश्वर को देखते हैं वह सत्य है, ठीक वैसे ही जैसे हम नए नियम में जिस ईश्वर को देखते हैं वह सत्य है। एक ने दूसरे को रास्ता नहीं दिया है, वे एक ही हैं। यहोवा ने दूसरों के पक्ष में अपनी कुछ विशेषताओं को त्यागा नहीं है। भागों का योग पूरे का सबसे अच्छा चित्र प्रस्तुत करता है।
तो चलिए वचन पर वापस आते हैं और कुछ और तस्वीर देखते हैं। हम लैव्य व्यवस्था 13 में थे और तजारात का अध्ययन कर रहे थे, गंभीर त्वचा रोग जिसके कारण व्यक्ति धार्मिक रूप से अशुद्ध हो जाता है। जब हमने पिछली बार अपना पाठ समाप्त किया था तो हम लिम्बो की इस स्थिति पर चर्चा कर रहे थे। फिर से लिम्बो मेरा शब्द है, शास्त्र नहीं। एक तरह की निर्जन भूमि जिसमें एक व्यक्ति को तजारात होने का संदेह था, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई थी। वह खुद को पाता था, उसे शिविर से बाहर नहीं रखा गया था जैसा कि आम तौर पर अशुद्ध लोगों को रखा जाता है। हालांकि निर्णय सुनाए जाने की प्रतीक्षा की अवधि के दौरान उसे अशुद्ध माना जाता था। ऐसा कहा जाता है कि जब तक निर्दोष साबित नहीं हो जाता तब तक वह दोषी है। फिर भी हमें यह पहचानना चाहिए कि लैव्य व्यवस्था में तजारात और अनुष्ठान अशुद्धता के बारे में ये नियम आध्यात्मिक वास्तविकता का एक भौतिक प्रदर्शन मात्र है जो आज भी मौजूद है अशुद्ध लोगों को परमेश्वर द्वारा उसके साथ या यहोवा के समुदाय के साथ संबंध रखने के लिए अयोग्य माना जाता है। अशुद्ध लोग तब तक निराशाजनक स्थिति में रहते हैं जब तक वे पश्चाताप नहीं करते और यीशु को स्वीकार नहीं करते। आज अशुद्ध लोग अविश्वासी हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि भले ही सभी लोग सामान्य और स्वच्छ पैदा होते हैं, लेकिन हमारे पापी स्वभाव हमें पाप करने और इसलिए अशुद्धता की ओर ले जाते हैं।
हम कितनी बार सुनते हैं, यहां तक कि कुछ बेहतरीन बाइबल शिक्षण चर्चों में भी, कि परमेश्वर का प्रेम इतना महान है कि वह उन सभी को नरक में भेज सकता है और उनसे हमेशा के लिए अलग कर सकता है जो उसके पुत्र के अधीन नहीं होते, कि उसकी पवित्र पीठ निश्चित रूप से उन लोगों पर नहीं मुड़ सकती जो एक अच्छा और नैतिक जीवन जीते हैं, दान देते हैं और गरीबों की देखभाल करते हैं, अच्छे और उदार हैं, यहाँ तक कि आध्यात्मिक रूप से उन्मुख हैं, लेकिन खुद को यीशु को अपने जीवन का प्रभु बनाने के लिए नहीं ला सकते। निश्चित रूप से एक प्रेम पूर्ण और दयालु परमेश्वर ऐसा कुछ नहीं करेगा। नए नियम का परमेश्वर पुराने नियम के परमेश्वर से कम कठोर नहीं है, क्योंकि वह कल, आज और हमेशा एक जैसा है। आप या तो शुद्ध और पवित्र हैं और परमेश्वर के राज्य में हैं, या आप अशुद्ध और अपवित्र हैं और उसके राज्य से बाहर हैं, और यह निर्णय पूरी तरह से इस बात पर किया जाता है कि आप मसीह पर भरोसा करते हैं या नहीं।
आइए लैव्य व्यवस्था 13 की आयत 1 से 17 तक पढ़ें। लैव्य व्यवस्था 13 का 1 से 17 पढ़ें। अध्याय 13 में उन कुछ मौकों में से एक है जब यहोवा हारून और मूसा दोनों से बात करता है, और पद 2 में त्वचा रोग के सामान्य लक्षणों की एक सूची दी गई है, ताकि इनमें से कोई भी लक्षण होने पर किसी पुजारी के पास जांच के लिए आना पड़े। चकत्ते, सूजन, बाल और त्वचा का रंग बदलना जो सामान्य नहीं है, ये सभी चिंता का कारण है। मूल रूप से विचार यह है कि यदि प्रभावित क्षेत्र में बाल सफेद हो गए हैं, या यदि दाने त्वचा की सतह से कहीं ज्यादा गहरे हैं, या यदि घाव त्वचा में आसपास के त्वचा क्षेत्र से कहीं ज्यादा गहरे गड्ढे छोड़ता है, तो गंभीर तजारात का संदेह किया जाना चाहिए। लेकिन यह पुजारी है, न कि वह व्यक्ति जिसे बीमारी है, जिसे इसका निर्धारण करना चाहिए, क्योंकि यह पुजारी ही है जिसका काम साफ और अशुद्ध के बीच अंतर करना है। बेशक कुछ त्वचा रोगों के कुछ चरण होते हैं जिनके कारण उनका सही निर्धारण करना कठिन हो जाता है कि मामला कितना गंभीर है। इसलिए अगर शरीर पर कोई प्रभावित क्षेत्र सफेद होना शुरू हो गया है, लेकिन उस क्षेत्र में बाल अभी तक सफेद नहीं हुए हैं, तो व्यक्ति को आम तौर पर अलग कर दिया जाता है, लेकिन उसे शिविर से बाहर नहीं भेजा जाता है। इस बिंदु पर व्यक्ति एक तरह की अनिश्चितता, मेरे शब्द बाइबल के नहीं, में होता है, जब तक कि 7 दिन और नहीं बीत जाते और पुजारी द्वारा उसकी फिर से जांच नहीं की जाती। अगर स्थिति खराब नहीं हुई है तो उसे 7 दिन और क्वारंटीन किया जाता है और फिर से उसकी जांच की जाती है। अगर 14 दिनों के बाद बीमारी कम हो जाती है तो उसे साफ घोषित कर दिया जाता है और वह अपने घर वापस जा सकता है। लेकिन अगर साफ घोषित किए जाने के बाद प्रभावित क्षेत्र बड़ा हो जाता है, तो उसे खुद को फिर से पुजारी के सामने पेश करना होगा और पूरी संभावना है कि उसे अशुद्ध घोषित कर दिया जाएगा, जिसका मतलब है कि जब तक बीमारी बनी रहेगी तब तक उसे शिविर से बाहर भेज दिया जाएगा। बिल्कुल उस नई मां की तरह जिसने बच्चे को जन्म दिया है और पहले ज्यादा अशुद्धता के द्वार से गुजरती है और फिर कम अशुद्धता के द्वार से। फिर भी दोनों मामलों में अशुद्ध निदान के नतीजे का इंतजार करते हुए अधर में लटका हुआ व्यक्ति अशुद्धता की स्थिति में है, अशुद्ध। लेकिन यह कम हद तक है, इसलिए उसे शिविर से बाहर नहीं रखा जाता है, हालांकि वह अपने परिवार के तंबू या घर में या आम लोगों के साथ नहीं रह सकता है और निश्चित रूप से इस दौरान धार्मिक अनुष्ठान में भाग नहीं ले सकता है। महान इब्रानी आर्श राशि ने कहा कि इन लिंबो लोगों के लिए शिविर के बाहरी इलाके के पास एक विशेष तंबू या घर था, लेकिन फिर भी यह शिविर के बाहर नहीं था।
हालांकि बाइबल दोनों को समान नहीं मानती है, लेकिन इसराइलियों द्वारा आम तौर पर यह माना जाता था कि अगर किसी चर्म रोग का निदान थे के रूप में किया जाता है, तो यह अनिवार्य रूप से एक आंतरिक और छिपी हुई आध्यात्मिक स्थिति का बाहरी चिन्ह है जो केवल ईश्वर को ही झांक है। इसका अर्थ यह है कि इस व्यक्ति ने यहोवा के विरुद्ध किसी प्रकार का अपराध किया था और इसलिए उसे चर्म रोग के रूप में उसकी पापी स्थिति को उजागर करके दंडित किया जा रहा था। कई सप्ताह पहले हमने चर्चा की थी कि अगर कोई व्यक्ति दोषी महसूस करना शुरू कर दे लेकिन यह निश्चित न हो कि उसने क्या किया है तो कुछ बलिदान कैसे किए जाते हैं। जब हम इसे इब्रानियों के विश्वास की अवधारणा से जोड़ते हैं कि थे किसी गुप्त या अज्ञात अपराध के लिए यहोवा की ओर से एक दंड था, तो हम देखते हैं कि इसराइलियों में से अधिक घबराए हुए और असुरक्षित लोगों ने शायद किसी ऐसी चीज के लिए प्रायश्चित करने के लिए बहुत सारे जेवा बलिदान चढ़ाए जो थे में परिणत हो सकती थी यदि वे इन अनुष्ठानों को न करें और अपने अपराध के लिए प्रायश्चित न करें। फिर भी हमें कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि यही वह उद्देश्य था जिसे परमेश्वर ने चाहा था। पुराने नियम के दिनों में भी नहीं, मसीह स्पष्ट करते हैं कि हमें कभी यह नहीं मानना चाहिए कि उदाहरण के लिए किसी की बीमारी या दुर्भाग्य सीधे तौर पर उनके द्वारा किए गए किसी अपराध पाप से जुड़ा हुआ है। जाहिर है विश्वासियों के रूप में हम जानते हैं कि जब पाप दुनिया में आया तो मृत्यु और बीमारी भी आई, और विश्वासियों के रूप में हम मृत्यु और बीमारी से प्रतिरक्षित नहीं हैं, क्योंकि ये बाहरी आवरण हमारे शरीर बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे गैर विश्वासी लोग घूमते हैं। इसलिए ये कहना उचित है कि पाप और बीमारी के बीच किसी तरह का संबंध है। फिर भी जैसा कि बाइबल में बार बार बताया गया है, कोई यह निर्णय नहीं ले सकता और न ही लेना चाहिए कि किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य सीधे तौर पर इस बात से संबंधित हो सकता है कि उसने कितना अच्छा या बुरा जीवन जिया है, या कि हम किसी व्यक्ति की बीमारी के लिए उस व्यवहार को दोषी ठहरा सकते हैं जो हमारे अपने व्यवहार से कमतर है। मिस्र से बाहर निकले इसराइली लोग बहुत अंधविश्वासी थे। वे इसराइली भी अंधविश्वासी थे जिन्होंने सबसे पहले कनान में प्रवेश किया, और वे जिन्होंने सबसे पहले इसराइल का संप्रभु राष्ट्र बनाया, और वे जिन्हें असीरिया और बाद में बेबीलोन में निर्वासित किया गया इत्यादि। हमारे लिए यह समझना बहुत बड़ी बात नहीं है कि तजारात होने और शिविर से बाहर रखे जाने के साथ कितना भयानक सामाजिक कलंक जुड़ा हुआ था। यह इतना विनाशकारी था कि इसे धार्मिक रूप से अशुद्ध घोषित किया गया। यहोवा के साथ सभी संबंध अलग हो गए। अब आप एक सामाजिक रूप से बहिष्कृत व्यक्ति थे, और जहां तक स्वस्थ इसराइलियों का सवाल है, आप इसके हकदार थे। पीड़ित व्यक्ति के परिवार के लिए यह उतना ही विनाशकारी था क्योंकि बहिष्कृत व्यक्ति की स्थिति उन पर भी दिखाई देती थी। अगर परिवार का कोई पुरुष तजारात से संक्रमित था तो इसका मतलब उसके परिवार के लिए गरीबी हो सकती थी। अगर यह मां या पत्नी थी तो इसका मतलब था कि वे अपने शिशु से भी अलग हो सकते थे, संभवतः जीवन भर के लिए। जिस तरह अध्याय 13 के पहले 8 पद त्वचा रोग के नए खोजे गए मामलों से निपटते हैं, उसी तरह पद 9 से 17 त्वचा रोग के जीर्ण मामलों से निपटते हैं। कुछ अनुवादों में पुराना लिखा हो सकता है जो थोड़ा भ्रमित करने वाला है, लेकिन इसका मतलब है चल रहा या बार बार होने वाला। तो विचार यह है कि किसी को त्वचा रोग हो सकता है जो चल रहा है, लेकिन यह निर्धारित किया गया है कि यह गंभीर नहीं है और इसलिए उस व्यक्ति को अशुद्ध नहीं घोषित किया गया है। या उसे तजारात हो सकता है, उसे शिविर से बाहर रखा गया था, यह ठीक हो गया था और उसे पवित्रता वापस मिल गई थी, और इसलिए उसे अपना जीवन सामान्य रूप से जारी रखने की अनुमति दी गई है। लेकिन क्योंकि कुछ लक्षण लगातार बने रहते हैं या यह वापस आ गया है, इसलिए पुजारी द्वारा इसकी फिर से जांच की जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह खराब नहीं हुआ है और तजारत नहीं बन गया है जिसके लिए संगरोध की आवश्यकता है। इसलिए पुरानी त्वचा की बीमारियों के लिए मानदंडों के एक अलग सेट की आवश्यकता होती है। संक्षेप में, यदि कच्चा उजागर मांस मौजूद है तो इसका मतलब है कि बीमारी ठीक से ठीक नहीं हुई है और इसे तजारत माना जाना चाहिए। 7 दिन की अवधि के बाद, जिसके बाद एक और परीक्षा होती है, की आवश्यकता नहीं है। पुरानी त्वचा की बीमारी के मामले में अगर तजारात का संकेत मिलता है
तो आपको तुरंत शिविर से बाहर कर दिया जाता है। हमारे अधिकांश अनुवाद मांस के सफेद होने की बात करते हैं, और अगर यह सफेद हो गया है तो यह एक अच्छा संकेत है कि उपचार हो रहा है। यह थोड़ा भ्रामक है, क्योंकि जबकि पिछली आयतों में त्वचा का सफेद होना एक बुरा संकेत था, यह ल्यूकोडर्मा था, क्योंकि इसमें त्वचा के रंग द्रव्य का नुकसान शामिल था, यह बीमारी का संकेत था। इस मामले में सफेद त्वचा का मतलब नई विकसित और स्वस्थ त्वचा है, जो उपचार का संकेत है, और इसलिए व्यक्ति को स्वच्छ घोषित किया जाता है और घर भेज दिया जाता है।
आइए हम पद 18 से 46 पर आगे बढ़ें। लैव्य व्यवस्था 13 का 18 से 46 पढ़ें। ये आयतें लोगों पर त्वचा रोग के निदान के साथ जारी रहती हैं, और ये स्थितियां ऐसी हैं जो एक तरह के द्वितीयक संक्रमण के रूप में उत्पन्न होती हैं। हो सकता है कि कोई जलन हुई हो जो कभी ठीक से ठीक नहीं हुई और अब यह संक्रमित हो गई है, या व्यक्ति को कुछ समय के लिए कोई अन्य स्थिति थी और अब तजारात के ये पहचानने योग्य त्वचा रोग लक्षण दिखाई देने लगे हैं। हम इन 28 आयतों में शामिल बारीक बिंदुओं की लंबी सूची पर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वे केवल बहुत विस्तार से परिभाषित करते हैं कि किसी विशेष त्वचा की स्थिति का निदान किस प्रकार किया जाना चाहिए। यह इस बात पर निर्भर करता है कि यह कैसी दिखती है और यह कहाँ है, बाल, खोपरी आदि, और यह पुजारी को यह निर्धारित करने में मदद करता है कि जो हो रहा है वह प्राकृतिक है या नहीं। उदाहरण के लिए, क्या बालों का झर ना बीमारी का परिणाम है या यह प्राकृतिक गंजापन है? यदि यह सामान्य गंजापन है तो व्यक्ति को शुद्ध घोषित किया जाना चाहिए। यदि यह कुछ बीमारियों का परिणाम है तो व्यक्ति को अशुद्ध माना जाना चाहिए। पद 42 हमें एक ऐसे शब्द से परिचित कराता है जिससे हमें परिचित होना चाहिए, मेदसौरा। मेदसौरा वह नाम है जिसे उस व्यक्ति को कहा जाता है जिसे तजारात से पीड़ित पाया जाता है, और इस उपाधि का अर्थ है कि वह व्यक्ति अशुद्ध गंदा है। और पद 45 में हमें निर्देश मिलते हैं कि मेदसौरा के साथ क्या किया जाना चाहिए। कोई ऐसा व्यक्ति जिसे पुजारी द्वारा तजारात होने की घोषणा की गई हो, सबसे पहले व्यक्ति के वस्त्र फारे जाने चाहिए। इब्रानी में यह शब्द पारम है, जिसका आमतौर पर सही अनुवाद किराए के रूप में किया जाता है या फटा हुआ। हालांकि परंपरा के अनुसार कपड़े के कपड़े को सचमुच फारने या चीरने के बजाय व्यक्ति अपने कपड़े को एक सिलाई से अलग कर देता था, निस्संदेह, ताकि बाद में कपड़े को बहुत भद्दा बनाए बिना उसे ठीक किया जा सके। परिधान का फटना पारम दूसरों के लिए इतना संकेत नहीं था कि व्यक्ति अशुद्ध है और इससे बचना चाहिए, बल्कि यह संकेत था कि व्यक्ति शोक में था। तेजारथ मामले में शोक उसकी अशुद्ध होने की स्थिति और उसके बाद होने वाले गंभीर नतीजों के कारण था। अगला कदम यह था कि मेदसौरा का सिर खुला रखना था। परिधान के फटने की तरह सिर का खुला रखना अशुद्ध होने का कोई विशेष संकेत नहीं था, बल्कि यह किसी कारण से उस व्यक्ति के शर्मिंदा होने का एक सामान्य संकेत था। उदाहरण के लिए, व्यभिचार करने वाली महिला को अपना सिर खुला रखना पड़ता था। सिर खुला रखने का मतलब था कि महिला अपने सिर को ढकने वाले सामान्य स्कार्फ को उतार देगी, अपने बालों को खोल देगी और उन्हें अस्त व्यस्त तरीके से खुला छोड़ देगी। इस तरह से एक वेश्या को हर समय अपने बाल रखने के लिए मजबूर किया जाता था। एक आदमी अब टोपी नहीं पहनेगा और वह भी अपने लंबे बालों को खुला और अस्त व्यस्त छोड़ देगा। इस प्रकार समुदाय यह देख सकता था कि यह व्यक्ति किसी अपराध के कारण शर्मिंदगी झेल रहा है। तीसरी शर्त यह थी कि जब भी कोई व्यक्ति उसके पास आए तो मेदसौरा को अपने ऊपरी होंठ को अपने हाथ से ढकना था। यह इस बात का विशिष्ट संकेत था कि वह व्यक्ति अशुद्ध है और दूसरों को उससे दूर रहना चाहिए। मेदसौरा को अपना हाथ लेकर अपने ऊपरी होंठ के ऊपर और नाक के नीचे रखना था, और जब कोई उसके पास आए तो उसे अशुद्ध अशुद्ध कहना था, जो दूसरों को दूर रहने की चेतावनी थी। तो हम यहां देखते हैं कि व्यक्तिगत शोक की भावना और व्यक्तिगत शर्म और व्यक्तिगत पवित्रता की हानि सभी तजारत के संक्रमण से जुड़े थे। ऐसी चीज से व्यक्ति का जीवन बर्बाद हो सकता है, ऐसी चीज जो आमतौर पर उस व्यक्ति की गलती नहीं होती।
लेकिन यह सबसे बुरी बात नहीं है, इस समय व्यक्ति को शिविर के बाहर अकेले या अक्सर अन्य लोगों के साथ रखा जाना चाहिए जो पीड़ित हैं, और जब तक पुजारी द्वारा यह निर्धारित नहीं किया जाता है कि वह अभी भी तजारात से संक्रमित है, तब तक वह अपने परिवार, दोस्तों और पूरे इसराइल राष्ट्र की संगति और निकटता से बाहर रहेगा, और यह व्यक्ति ईश्वर द्वारा भी तिरस्कृत है। यह कोई अनुमान या परंपरा नहीं है। शास्त्र स्पष्ट रूप से कहता है कि वह व्यक्ति प्रभु से अलग हो गया है।
यह कैसी तस्वीर पेश करता है? यह कितनी दुखद तस्वीर पेश करता है। एक व्यक्ति को त्वचा रोग के कारण अशुद्ध घोषित कर दिया जाता है, अक्सर उसकी अपनी कोई गलती नहीं होती और उसे उसके परिवार, उसके लोगों और परमेश्वर के साथ किसी भी रिश्ते से बहिष्कृत कर दिया जाता है। मैंने कई मौकों पर कहा है कि मेरा मानना है कि यहोवा द्वारा नियम, कानून, प्रक्रिया और अनुष्ठान निर्धारित करने का मुख्य कारण शायद इन अक्सर दिल तोड़ने वाली और दर्दनाक स्थितियों का आध्यात्मिक सिद्धांतों के नाटकीय दृश्यों के रूप में उपयोग करना था। आप देखिए कि इन बेचारे मेत्सोरा की स्थिति मूल रूप से यहोवा द्वारा सभी अविश्वासियों को देखने के तरीके से ही है, अशुद्ध और बहिष्कृत के रूप में।
हाँ, वर्तमान दुनिया में ये अशुद्ध लोग, अविश्वासी, हमारे गृह के अधिकांश लोग, जिनका प्रतिनिधित्व बहुत से ऐसे लोग करते हैं जिन्हें हम बहुत प्यार करते हैं, हमारे पड़ोसी और मित्र और परिवार के सदस्य परमेश्वर के लिए मेत्सोरा की तरह हैं। वे अपने दिन शिविर के बाहर बिताते हैं, उसके साथ किसी भी रिश्ते से बाहर वे लोकप्रिय हो सकते हैं और उनका विवाह सुखी हो सकता है और कई बच्चे हो सकते हैं। वे अच्छी नौकरी कर सकते हैं, आर्थिक रूप से सफल हो सकते हैं और कई लोगों द्वारा उनकी प्रशंसा की जा सकती है, लेकिन वह समय बहुत कम है। उनकी अपरिहार्य मृत्यु के बाद वे हमेशा के लिए हर उस चीज और हर उस व्यक्ति से अलग हो जाएंगे जो ईश्वरीय है।
अतः आध्यात्मिक सिद्धांत के दृष्टिकोण से किसी व्यक्ति पर तजारात एक बाहरी दृश्य मात्र है,
उसकी आंतरिक यानी उसकी आध्यात्मिक स्थिति। हमने इसी सिद्धांत को निर्गमन में मूसा के साथ देखा था, जब यहोवा ने उसे अपना हाथ उसके वस्त्र में डालने को कहा था और उसे बाहर निकालने को कहा था। उस घर कोढ़ नहीं था लेकिन तजारात था। अब जब हमने तजारात का अध्ययन कर लिया है, तो क्या आप परमेश्वर और मूसा के बीच हुई उस घटना के महत्व को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं? एक पल के लिए मूसा को अशुद्ध होने का एहसास हुआ, फिर यहोवा ने उसे उस बीमार हाथ को वापस उसके वस्त्र में डालने को कहा और वह तजारात से ठीक हो गया और मूसा शुद्ध हो गया। परमेश्वर मूसा को उसकी सच्ची आध्यात्मिक स्थिति दिखा रहा था और फिर नाटकीय रूप से मूसा को दिखाया कि उसे इस आध्यात्मिक अशुद्धता से ठीक करने के लिए परमेश्वर के कार्य की आवश्यकता होगी। यह सब एक नमूना, एक मॉडल और एक छाया थी जिसे परमेश्वर अपने पुत्र यीशुआ के माध्यम से सभी मानव जाति के लिए उपलब्ध कराने जा रहा था। यीशुआ, परमेश्वर, असाध्य, अशुद्ध आप में हर किसी को शुद्ध कर देगा। यीशु हमें ले जाएगा जो शिविर के बाहर निराशाजनक रूप से निर्वासित थे, एक प्रकार की अशुद्धता से पीड़ित थे जिससे कोई भी व्यक्ति छूट का दावा नहीं कर सकता था, और हमें शिविर में ले जाएगा और इसराइल के परमेश्वर के साथ संगति में ले जाएगा। लेव्य व्यवस्था 13 का 47 से 59 पढ़े। पद 47 से शुरू होने वाले एक अजीब मोड़ का सामना करते हैं। तजारत की स्थिति अब निर्जीव वस्तुओं पर लागू होती है, लोगों पर नहीं बल्कि कपड़ों और चमड़े पर। जाहिर है कि हम अब सोरायसिस और ल्यूकोडर्मा जैसी मानवीय बीमारियों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, फिर भी तोरह कपड़े और चमड़े पर होने वाले रंग परिवर्तन और वृद्धि को थे के रूप में संदर्भित करना जारी रखता है, और इस स्थिति ने उस कपड़े और चमड़े को धार्मिक रूप से अशुद्ध बना दिया। यह उस बात के अनुरूप है जो हमने कई अध्याय पहले सीखा था कि अशुद्धता बर्तन, कटोरे, कुर्सियों और अन्य निर्जीव वस्तुओं जैसी चीजों में फैल सकती है। शायद एक पल के लिए रुककर यह याद रखना अच्छा होगा कि तजारात, कोशेर खाने, नई मां की अशुद्धता इत्यादि के मामले पवित्रता और इसके विपरीत अशुद्धता के हैं, और हम पाते हैं कि पवित्रता और अशुद्धता असंगत है। दोनों को एक दूसरे से मिलने की अनुमति नहीं दी जा सकती। पवित्रता का एक पहलू संपूर्णता है, और पद 47 में जहां ऊन या लिनन से बने कपड़े की बात की गई है, वहां पर क्रियाशील शब्द या है। बाइबल के समय में कपड़े बनाने के लिए ऊन और लिनन दो सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले रेशे थे, लेकिन यह यहोवा का आदेश था कि उसके लोग कपड़े के एक ही टुकड़े में दो रेशों को न मिलाएं। हमें यह सीधा आदेश व्यवस्था विवरण 22 का 11 में मिलता है। ऊन को लिनन के साथ मिलाकर कपड़े का टुकड़ा नहीं बनाया जाना चाहिए। इस बारे में बहुत अटकलें लगाई जाती हैं कि इन दो रेशों लिनन और ऊन को क्यों नहीं मिलाया जाना चाहिए। शायद सबसे स्पष्ट बात यह है कि एक रेशा ऊन एक जानवर से आता है और दूसरा लिनन एक पौधे से आता है। इसलिए इब्रानियों को पशु और पौधे के जीवन के मिश्रण से बने वस्त्र नहीं पहनने थे। यह रेशों का मिश्रण है जो पवित्रता के साथ असंगत है, संपूर्णता के विपरीत मिश्रण, और जो कुछ भी संपूर्णता का प्रतिनिधित्व नहीं करता है उसके प्रति यहोवा का विरोध यहां एक आध्यात्मिक सिद्धांत के रूप में प्रदर्शित किया जा रहा है। संपूर्णता का यह आध्यात्मिक सिद्धांत सभी आध्यात्मिक सिद्धांतों की तरह नया नियम में भी लागू होता है, क्योंकि वहां हमें दर्जनों शास्त्र मिलते हैं जो विश्वासियों को अविश्वासियों से शादी करने, विश्वासियों को वेश्याओं के साथ सोने, शुद्ध और अशुद्ध का मिश्रण, विश्वासियों को यहोवा और अन्य देवताओं की पूजा करने, असमान रूप से जुए में न बंधने की सामान्य आज्ञा और इसी तरह की अन्य बातों के खिलाफ चेतावनी देते हैं। कपड़े और चमड़े पर तजारात के बारे में नियम यह है कि अगर कपड़ों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कपड़े या कपड़ों या जूतों या किसी भी चीज के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले चमड़े पर तजारात प्रकार का संक्रमण पाया जाता है तो वह वस्तु अशुद्ध है और उसे निपटाया जाना चाहिए। और प्रक्रिया परिचित और बुनियादी है। आम इसराइली संदिग्ध वस्तु या कपड़े के लेख को पुजारी के पास लाता है, और अगर पुजारी को तजारत का संदेह होता है तो उस वस्तु को 7 दिनों के लिए अलग रखा जाता है। अगर 7 दिनों के बाद संक्रमण फैल गया है तो इसे तजारत माना जाता है और वस्तु को जला दिया जाना चाहिए, क्योंकि यह धार्मिक रूप से अशुद्ध है, अशुद्ध। हालांकि अगर संक्रमण नहीं फैला है तो वस्तु को पानी से धोया जाना बाह्य और फिर 7 दिनों के लिए अलग रखा जाना चाहिए। अगर संक्रमण की उपस्थिति उन 7 दिनों के बाद भी वैसी ही है तो इसे अशुद्ध माना जाता है और इसे जला दिया जाना चाहिए। अगर हालांकि संक्रमण कम हो गया है तो कपड़े या चमड़े का केवल वह हिस्सा जिस पर संक्रमण था उसे फाड़ दिया जाना चाहिए। अगर वस्तु का बाकी हिस्सा संक्रमण से मुक्त रहता है तो सब ठीक है, लेकिन अगर संक्रमण वापस आ जाता है तो पूरी वस्तु को जला दिया जाना चाहिए। जिस वस्तु का संक्रमित भाग निकाल दिया गया हो उसे फिर से उपयोग करने के लिए पानी में डुबोकर धोना चाहिए। यह दिलचस्प है ना, कि अशुद्धता से शुद्धिकरण की विधि के रूप में जल विसर्जन का विचार लैव्य व्यवस्था में और फिर बाद में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की सेवकाई में और फिर अंत में मसीह की सेवकाई में इतनी मजबूती से बुना गया है। इन सभी अनुष्ठानों और सेवकाइयों में जल में विसर्जन इतना अभिव्र क्यों है? क्या पानी में कोई अंतर्निहित गुण है कि जब अनुष्ठान शुद्धिकरण जैसे बपतिस्मा के रूप में उपयोग किया जाता है तो आध्यात्मिक सफाई होती है? शराब में क्यों नहीं डुबोया जाता या जैतून के तेल में? उस प्रश्न का उत्तर क्यों के मामले जैसा है। बलिदान के लिए और कोशेर खाने की आवश्यकताओं के लिए परमेश्वर द्वारा कुछ जानवरों का चयन आखिरकार एक साफ जानवर, एक सामान्य या पूरा जानवर नहीं होता है, जबकि एक अशुद्ध जानवर एक असामान्य या पूरा जानवर नहीं होता है। भेड़ में ऊंट, खरगोश या सुअर से बेहतर कुछ भी नहीं है। किसी और चीज के बजाय पानी का इस्तेमाल करके विसर्जन करना, यह चुनना कि कौन से जानवर साफ और अशुद्ध हैं, कौन सा खाना साफ और अशुद्ध है, यह सब यहोवा द्वारा अपने अच्छे कारणों से लिया गया निर्णय और घोषणा है। ऐसे कारण जो किसी तरह से शाश्वत आध्यात्मिक दुनिया को दर्शाते हैं, ऐसे कारण जो कभी नहीं बदलते, क्योंकि वह जो आध्यात्मिक और भौतिक का निर्माता है कभी नहीं बदलता। क्यों का उत्तर जल विसर्जन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और यीशु की सेवकाई में इतना केंद्रीय था, क्योंकि यह लैव्य व्यवस्था में निर्धारित आध्यात्मिक पैटर्न और मॉडल के भीतर रहता है, एक पैटर्न जो दर्शाता है कि कैसे अशुद्ध लोग शुद्ध हो जाते हैं। और यह वही है जो अध्याय 13 की अंतिम आयत हमें बताती है कि इन प्रक्रियाओं का उद्देश्य जो यह निर्धारित करती है कि किसी व्यक्ति में थे है या नहीं, बीमारियों और विपत्तियों के बारे में नहीं है। यह शुद्ध को अशुद्ध से अलग करना है। क्या आप महसूस करते हैं कि यह एक प्राथमिक कर्तव्य है जो एक विश्वासी को सौंपा गया है? हमें अपना जीवन यह निर्धारित करते हुए जीना है कि हमारे लिए क्या शुद्ध है और क्या अशुद्ध है। हमें उन चीजों से दूर रहना है जो हमारे लिए आध्यात्मिक रूप से अशुद्ध हैं। हम वास्तव में कैसे जानते हैं कि हमारे लिए क्या शुद्ध और अशुद्ध हो सकता है? तो रह पढ़ें, क्योंकि जैसा कि संत पौलुस 2 कुरिन्थियों 6:15 में कहता है, या मसीह का बलियाल से क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या संबंध, 16 या मूरतों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें वास करूंगा और उनके मध्य चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। 17, इसलिए उनके बीच से निकलो और अलग रहो, यहोवा कहता है, और जो अशुद्ध है उसे मत छुओ और मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। 18, और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। जैसे जैसे हम अध्याय 13 के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, मैं यह कहना चाहूंगा कि अधिकांश टिप्पणियों की तरह, चाहे ईसाई हो या यहूदी, कुछ मददगार हैं और कुछ काल्पनिक हैं। तजारात के विषय पर कई यहूदी टिप्पणियां हैं और वे निश्चित रूप से लगभग समान रूप से उन्हीं 2 श्रेणियों में विभाजित हैं। हालांकि हमारे उद्देश्यों के लिए जो बात मददगार है वह यह है कि यहूदियों ने तजारात को हमेशा एक शारीरिक बीमारी के बजाय एक आध्यात्मिक बीमारी के रूप में देखा जाता है। दूसरे शब्दों में तजारात एक शारीरिक संकेत है और साथ ही यहोवा द्वारा उस व्यक्ति पर एक शारीरिक निर्णय भी है जिसके पास यह बीमारी है। यह उस व्यक्ति की आध्यात्मिक स्थिति का एक भौतिक संकेत है। तो हमेशा यह सवाल पूछा जाता है कि उस व्यक्ति ने क्या पाप किया या उस व्यक्ति को परमेश्वर के साथ क्या समस्या थी।
गेमारा मिश्रा पर एक यहूदी टिप्पणी, जो खुद भी यहूदी टिप्पणी है, इसलिए यह टिप्पणी पर टिप्पणी है, 7 पापों और बुरे चरित्र लक्षणों को सूचीबद्ध करता है जिनके बारे में कहा जाता है कि वे किसी व्यक्ति पर तजारात का कारण बनते हैं। उन 7 में से अब तक का मुख्य अपराध लाशोनहारा था। लाशोनहारा का अर्थ है निषिद्ध भाषण। आमतौर पर इसका मतलब किसी के बारे में बुरा बोलना होता है या किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नष्ट करने के लिए शब्दों का उपयोग करना, लेकिन आमतौर पर इसका मतलब अपमानजनक टिप्पणियों से होता है। कई महान इब्रानी संतों ने लाशोनहारा के पाप को हत्या के बराबर या उससे भी बदतर माना।
इस कथन का कारण यह है कि भाषण को बहुत सम्मान दिया जाता था वास्तव में भय, क्योंकि तोरा हमें बताता है कि परमेश्वर ने ब्रह्मांड को अस्तित्व में लाने के लिए बोलकर कहा। हम सभी जानते हैं कि सबसे धार्मिक यहूदियों ने लगभग 300 ईसा पूर्व से परमेश्वर का नाम नहीं बोला है और वे किसी को भी अपनी उपस्थिति में इसे बोलते हुए बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए भाषण को बहुत शक्तिशाली माना जाता है और हमारे शब्दों को सावधानी से चुना जाना चाहिए। यह पुराना नियम और पारंपरिक विश्वास याकूब की पुस्तक में नया नियम में इसके समानांतर है और भाषण के बारे में पारंपरिक यहूदी मान्यताओं ने संभवतः यीशु के भाई याकूब के भाषण पर विचारों को प्रभावित किया। याकूब 3:5 में याकूब को सुने, इसी प्रकार जीभ भी शरीर का एक छोटा सा अंग है और फिर भी यह बड़ी बड़ी बातें कहती है। देखो, एक छोटी सी आग से कितना बड़ा जंगल जल जाता है। 6 और जीभ एक आग है, अधर्म की दुनिया जीभ हमारे अंगों में ऐसी है जो पूरे शरीर को अशुद्ध करती है और हमारे जीवन के मार्ग को आग लगाती है और नरक की आग से जलती है। जाहिर है कि यह नया नियम भाषण शब्दों के बारे में है। यह लाशोनहारा के खिलाफ एक चेतावनी है। यीशु ने एक बार कहा था कि हमारे मुंह में जो जाता है वह हमें अशुद्ध नहीं बनाता, बल्कि जो बाहर आता है वह हमें अशुद्ध बनाता है। जाहिर है, फिर से संदर्भ भाषण से है, इसलिए हम देख सकते हैं कि लाशोनहारा की यह अवधारणा अंततः पाप या समस्या के रूप में प्रमुख संदिग्ध क्यों बन गई, जिसके कारण एक व्यक्ति तजारत में फूट पड़ता है। मुद्दा यह है कि मेत्सोरा द्वारा झेली गई त्वचा की बीमारियों काफी वास्तविक थीं, लेकिन इब्रानियों ने इसका कारण जैविक नहीं बल्कि आध्यात्मिक माना। इसलिए यहूदी विचार जितना सांसारिक था और आज भी है, उन्होंने पहचाना कि हम तोरह क्लास में जिस पर चर्चा कर रहे हैं वह क्या है, कि तोरह शास्त्रों में थे और उसके कारण होने वाली अशुद्ध स्थिति के बारे में जो कुछ कहा गया है वह आध्यात्मिक सिद्धांत है, और चूंकि तजारत अपने साथ इतने विनाशकारी परिणाम लाता है, इसलिए इसे लाने वाला पाप भी विनाशकारी रहा होगा। और सबसे विनाशकारी पापों में से एक यहूदी संतों का मानना था किसी की निंदा करना या उसके बारे में बुरा बोलना था लाशोनहारा।
अगले सप्ताह हम लैव्य व्यवस्था 14 शुरू करेंगे।